पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फों की चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर, हसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिल मिलाते हैं झीलों के जेवर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। यहाँ के बशर है फरिश्तों की मूरत, यहाँ की जुबां है बड़ी खूबसूरत, यहाँ की फिजा में घुली है मोहब्बत, यहाँ की हवाएं मुअत्तर मुअत्तर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हसी ये नजारे, फरिश्ते उतर आए जैसे जमी पर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फकीरों का है आशियाना, यहाँ सर झुकाती है कुदरत भी आकर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। मगर कुछ दिनों से परेशान है ये, सियासी निगाहों से हैरान है ये, पहाड़ों में रहने लगी है उदासी, चिनारों के पत्तों में है बदहवासी, न केसर में केसर की खुशबू रही है, न झीलों में रौनक बची है जरासी, मगर दिल अभी भी यही कह रहा है, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। कवि आलोक श्रीवास्तव जी की इन पंक्तियों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज हम कश्मीरी पंडित शरणार्थी अपने देश में इस विषय पर ही बात करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर महेश कौल जी। आप इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च ICPR शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, जो कि श्री अरबिंदो और कश्मीर शैविज्म पर कार्य कर रहे हैं, में पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। आपके कई शोध पत्र एवं लेख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। वे कई शोध संस्थाओं की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आजकल वे अपने पुस्तक लेखन के कार्य में व्यस्त हैं। दिसंबर 2019 में आपकी पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जम्मू से डॉक्टर महेश कौल जी को अपने पॉडकास्ट से जोड़ते हैं और उनसे एक सार्थक संवाद करते हैं। नमस्ते सर, चुभन पर आपका स्वागत है।
नमस्ते भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चर्चा में आमंत्रित किया। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
जी सर, डॉक्टर साहब, आज हम लोग कश्मीरी पंडित शरणार्थी अपने देश में इस विषय पर जब बात शुरू करने जा रहे हैं तो मन भारी सा हो जाता है, क्योंकि जड़ से उखड़ना क्या होता है ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने भोगा होता है। वरना इस मुद्दे पर तो बात करो, बहुत से लोगों को लगता है कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है या भड़काया जा रहा है, पर मुझे जहां तक लगता है कि अभी तक ना ही प्रशासनिक स्तर पर और ना ही सामाजिक स्तर पर कश्मीरी पंडितों की कोई बहुत मदद नहीं की जा सकी है। आपने और आपके परिवार ने तो ये दर्द भोगा है और आज भी आप लोग भोग रहे हैं। तो 90 के दशक में जब आप लोग निकले तो क्या हुआ, आप लोगों का क्या संघर्ष था? आप यहीं से अपनी बात शुरू करें डॉक्टर साहब।
देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1989 और 90 का जो दशक रहा
जी,
वो अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक और हम कहें कि जिसमें कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। पूरी जो कश्मीरी पंडित समुदाय था उसको कश्मीर से पलायन करना पड़ा। ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरी संरचना थी, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी रही। जो अगर हम पीछे जाएं तो 1931 में अगर मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और उस समय जनसंहार हुआ, तो वो तो हमें पता था कि उस समय ऐसी स्थिति बनी कि दोनों ओर से उन्माद इतना था कि अब हमें पता था कुछ न कुछ होगा। लेकिन 1931 जब अभी भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक मोड़ ले रहा था और इंडियन स्टेट्स और जो जिसको हम कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स जो थे रजवाड़े, वो तब एग्जिस्ट करते थे, उसके बाद जो बाकी ब्रिटिश इंडिया था जिसपे पूरे ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे 530 के ऊपर ऊपर रहे 63 के करीब करीब, जिनका बाद में किस प्रकार से विलय हुआ दूसरी बात है। लेकिन 1931 में जिस प्रकार से पंजाब में कश्मीर कमेटी बनी जिसमें मुस्लिम लीग के लोग थे, मोहम्मद इकबाल जो उस कश्मीर कमेटी को चला रहे थे उसमें अरहार थे, अहमदिया थे, उन्होंने किस प्रकार जम्मू कश्मीर के हिंदू महाराजा को के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया यहाँ की प्रजा को, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू राजा था, तो यहाँ अंग्रेजों का भी रोल रहा, जिसके रेजिडेंट रहे वो ब्रिटिश डिपार्टमेंट के जो उनके थे एजेंट वो काम कर रहे थे। तो उसके बाद वो चलते चलते उन्होंने हिंदू राजा का बदला एक तरह से जो है कश्मीर में हिंदुओं से लिया, 1931 में बट लूट कहते हैं उसको, और कश्मीरी पंडितों पर वहां पर सारा वो रोष निकाला गया, जबकि उसका कोई हम कहें जायज ही नहीं था। हरी सिंह हाई स्ट्रीट जिसको महाराजा बाजार कहते हैं और बटकूट, वहां पर लूटमार हुआ, बलात्कार हुए और बहुत ही अजीब हालत हुई। उसके बाद आगे चल के कश्मीरी पंडितों ने एक एजिटेशन और की थी जिसको हम रोटी एजिटेशन कहते हैं। रोटी एजिटेशन में उन्होंने अपने जॉब्स की बात की और अपनी सुरक्षा की बात की, ये चीजें बनती गई। और उसके बाद जब आगे ये चीज बढ़ी तो उसी समय उन्होंने एक मांग रखी, जबकि पूरे भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी पूरी तरह नहीं हुआ था, कि एक रोटी एजिटेशन बनी तो उसके दायरे में लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम एक अल्पसंख्यक समुदाय है, हमें एक अलग संभाग दिया जाए जहां पर हम अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसी मांग थी। लेकिन फिर समय के चलते चलते अंडरकरंट्स रही और फिर एक और मुद्दा हुआ जिसको परमेश्वरी एजिटेशन कहते हैं
जी।
परमेश्वरी एजिटेशन 1960 के दशक में, लेट 60 के दशक में जब एक कश्मीरी पंडित लड़की एक लव जहाज जिसको आज हम कहते हैं, ऐसा ही कार्यक्रम वहां हुआ, उसको वरलाकर बहुसंख्यक लोगों ने उसका बलात् धर्म परिवर्तन किया, उस पर कश्मीरी पंडितों ने काफी रोष किया, हालांकि अल्पसंख्यक
बहुसंख्यक आप मुस्लिम आबादी को कह
रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी, वो मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक थे और 3% हम लोग थे
जी,
और उसमें उस लड़की का धर्म परिवर्तन हुआ, उसको परमेश्वरी से परवीन अख्तर बनाया गया और उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने इसका रोष प्रकट किया। उस रोष के जरिए बहुत बड़ी एजिटेशन रही जो आज भी हिस्ट्री में परमेश्वरी एजिटेशन के नाम से उसको माना जाता है। उसको रिफ्यूज कैसे किया गया, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, उसमें कई लोग मरे भी हमारे, जो जिसको हम कहेंगे कि शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान दे दी, और वहां से पता लगा कि प्रतिकार होना शुरू हुआ। और अल्टीमेटली जैसे जैसे फिर आतंकवाद का जो दौर है, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद रातों रात नहीं आया
जी,
वहां पर एक सबसे पहले अल फतह करके ग्रुप 60 के दशक में लेट से, उसके बाद ही उसी दौरान जब मैं परमेश्वर एजिटेशन की बात करता हूँ, जिसमें कई लोग थे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह वगैरह, उन लोगों ने वहां पर जो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेना शुरू किया और वहां पर प्लेडियम में, सबसे प्लेडियम एक सिनेमा हॉल लाल चौक में, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहां से इसका शंखनाद उन्होंने किया जिसको हम जहाद कहते हैं। उसमें फिर आगे आगे वही JKLF में परिवर्तित हुआ, वो दूसरी कहानी है। लेकिन उससे पहले शेख अब्दुल्ला का पहली साइड फ्रंट जिसको मुहाजिर राजशुमारी कहते हैं, जिसमें मिर्जा अफजल बेग ने काम किया, मतलब वो भारत से बिल्कुल अलगाव चाहते थे, उसको जेल भी डाला गया। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें चलती गई और लैंड पिलर हुआ, क्योंकि कहीं पर भी कश्मीर में जहां अगर हम ये लोग कहते थे कि भाई जो हल जोतता है उसी को जमीन मिलेगी, और कश्मीरी पंडित लैंडलॉर्ड भी कहीं था उसे जमीन ले ली गई विदाउट कंपनसेशन ले लेगी। कहीं भारत में भी इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद अगर किसी से लैंड ली गई तो उसका कंपनसेट हुआ, जिसकी गुजर बसर ही इस पर होती थी। ये दिखाया गया कि बहुत बड़े जागीरदार हैं, उनसे लैंड ले ली गई, उनका वो छीन लिया गया। और वो उसी टाइम से जो शेख अब्दुल्ला का काम रहा उस जहादी उन्माद में, उनसे लैंड भी ले ली गई, जिसको लैंड टू पिलर का नाम दिया गया विदाउट एनी कंपनसेशन। और ये वहां से कश्मीरी पंडित की डिसएम्पावरमेंट शुरू हुई। जब 90 का दशक आया तो ये कोल्ड वॉर जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं, जो अफगानिस्तान में चल रहा था, वहां से जितने भी मुस्लिम फाइटर्स थे जो वहां लड़ रहे थे रूस के विरोध में, उन्होंने यहाँ की ओर डायवर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि जनरल जियाउल हक ने एक प्लान बनाया था जिसको कहते हैं ऑपरेशन टोपैक। ठीक है, हेलो,
हाँ जी बिल्कुल।
ऑपरेशन टोपैक जो था, उस ऑपरेशन टोपैक का ये था कि हमने कश्मीर में 1000 जख्म दे के वहां भारत को लहूलुहान करना, उसी ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा ये स्ट्रेटेजी था कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालना, वो हिंदू हैं और उसे किस तरह से उनको निकालना है, ताकि क्योंकि यहाँ के पुराने लोग हैं, इनहेबिटेंट हैं, एबोरिजिनल हैं, इनका क्लेम यहाँ पर है, इनको जब निकाल ही दिया जाएगा तो फिर काम बिल्कुल साफ हो जाएगा, अपने इस्लामाइज करेंगे इसको। तो इस तरीके से उन्होंने मारना शुरू किया लोगों को एक एक करके, जो प्रोमिनेंट लोग थे, कोई जज था, कोई वकील था, कोई सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता था, उनको मारना शुरू किया। उससे क्या था, किल वन एंड फ्राइटन टेन, एक को मारो दस को डराओ। और अल्टीमेटली फिर उसके बाद कई लोगों का, जैसे हमारी जो लड़कियां, जो औरतें जो कहीं नौकरी करती थी, उनका निकलना बहुत दूभर हो गया था। और जैसे वो निकलती थी
जी,
तो फिर बाद में उनके उनको अपहरण भी किया गया कहीं का, जिसमें सरला भट्ट का नाम है, ये और गिरजा एक लड़की थी, उसका गैंग रेप किया गया, और उसके बाद आरे पर दो हिस्सों में चीरा गया। और नारे कैसे लगते थे, ऐसे कि पाकिस्तान बट और उसको बटने उसान, मतलब अगर उसका हिंदी में अनुवाद करें तो हमें पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी पंडित औरतों के साथ, लेकिन कश्मीरी पंडित मर्दों के बिना। इसका आप खुद एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं कि ये जनसंहार की लड़ाई थी। और जब भी कभी कश्मीरी पंडित नॉर्मल टाइम में कोई लड़की या कोई माता निकलती थी तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी होती थी, जानबूझ के उसको हरास करना। जैसे एक उसको कहते थे बटनी बटनी दुधिये मस इकरे कोसम दालीगढ़ वस मीन्स फिकरे कसमें। ये क्या था, जब बटनी होती है कश्मीरी पंडित संस्कृत भाषा में, जब वो निकलती थी उसको कहते थे, एक तरह से तंज करते थे, सरकास्ट, ताकि हरास हो गली से लड़के जमा होके कि एक कश्मीरी पंडितानी तुम वो तुम्हारा जो, क्योंकि हिंदू जो दाल वगैरह खाते हैं, खुद को मांसाहारी बड़ा शक्तिशाली समझते हैं, वो कहते थे कि कश्मीरी पंडितानी तुम बाहर आ रही हो, तुम्हारे उसके दाल के लोटे का क्या हुआ, तुम्हारा तुम्हारे बाल जल जाएं, मतलब इस तरह के फिक्रे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब एक डर पैदा करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और फिर बाद में वो इसमें परिवर्तित हुआ, और फिर उसके बाद तो पता ही है कि किस तरह से बिल्कुल ओपनली इन लोगों ने क्रॉस फायरिंग हुई, मारने शुरू हुए। और अल्टीमेटली इसी दौरान जब हम, मैं तो चौथी क्लास में था, मुझे पांचवी क्लास में जाना था, और शीतकालीन मौसम था, शीत ऋतु चल रही थी कश्मीर में, नवंबर दिसंबर का टाइम 89 का। सबसे पहले 13 सितंबर को जो कश्मीर में एक बहुत बड़े कश्मीरी पंडित लीडर स्वर्गीय टीकालाल जी टपलू थे, वो भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान थे, उनको मारा गया। हालांकि वो पेशे से वकील थे, एडवोकेट थे, लोगों के समाज सेवक भी थे, हर किसी का बिना धर्म के आधार पर बिल्कुल वो ध्यान नहीं रखते थे, हर किसी का वो हेल्प करते थे। और जिन लोगों की वो हेल्प करते थे, उन लोगों ने यानी कश्मीरी मुस्लिम बहुसंख्यक समाज से लोगों ने उनको मार दिया जिनके हेल्प करते थे। तो उसके बाद जब टीकालाल जी को मारा गया, क्योंकि वो काफी अच्छे समाज सेवक थे, उनके मरने के बाद लोगों में डर उत्पन्न हुआ कि जब ऐसे समाज सेवक जिनकी ओर लोग देखते थे, जो परमेश्वरी एजुकेशन में भी रोल प्ले किया, जब उनको मारा गया लोगों में डर पड़ना शुरू हुआ। जस्टिस नीलकंठ गंजू, उनको मारा गया, वो जस्टिस वही थे जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, जिन्होंने क्लब बनाया, और जो प्लेन गंगा में जो हाशिम कुरैशी थे उनका भी काफी रोल रहा, ऐसे लोग जिन्होंने हाईजैक किया, उन लोगों को लेकर ये काफी उन्माद का बदला लेना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब वो कश्मीरी पंडित को कश्मीर में भारतीयता का प्रतीक समझते थे, और भारतीयता के प्रतीक के ऊपर हमले। वैसे अगर देखा जाए तो 1986 में भी एक घटना हुई जो लोगों को बड़ी कम पता है, लोग कहते हैं कश्मीरी पंडित तो एकदम उठ के आ गए। मैंने 1931 की बात की, 47 में भी लूटमार हुआ, 47 में तो हुआ ही हुआ, जिसको ट्राइबल रेड कहते हैं वो, लेकिन ट्राइबल रेड नहीं था, पाकिस्तानी सेनाओं का आक्रमण था कश्मीर पर। अब मैंने अपनी दादी से सबने सुना हुआ है, लेकिन इस टाइप की चीज में बताऊं, 1986 में अनंतनाग बहुत अच्छा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, काफी अच्छे तीर्थ है वहां पर, लुक भवन है ऐसी जगह पर, वहां पर जन्माष्टमी के दिन गाय काटी गई, उसको वहां उसमें नाग में मतलब स्प्रिंग में डाला गया, जिसको काफी ये पायस समझा जाता था। काजी निसार का रोल रहा, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद राज, जिसको बाद में गृह मंत्री बनाया भारत सरकार में, जब बीपी सिंह की सरकार थी, जिसको भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी, तो उन्होंने उस दौरान क्या किया, उन्होंने भी उकसाया उसको, फ्यूचर ऑफ अनंतनाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उकसाया वहां पर, 86 में कश्मीरी पंडितों के घरों पर लूटमार हुई, मंदिरों को जलाया गया, लेकिन उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों ने 4 साल 90 तक निकाले, और लोग कहते हैं कश्मीर जगमोहन ने निकाला, 86 में भी तो जगमोहन थे, तो तब उन्होंने क्यों नहीं बचाया। 90 में जब ये जगमोहन की बात करते हैं तो 19 जनवरी 1990 को हम निष्कासन दिवस मानते हैं, और जब कश्मीर में गिने चुने कश्मीरी पंडित बचे, मैक्सिमम निकल गए, और जगमोहन 19 जनवरी की रात को पद और गोपनीयता की शपथ लेके जम्मू आते हैं तो वो कहाँ से भगाएंगे तो कश्मीर, और वो कहाँ से वो चीज करेंगे कि वो व्यवस्था करेंगे, उनको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। मुझे अपना पता, हमारे मोहल्ले में, घर मोहल्ले में चार पांच लोग इकट्ठे हुए, रातों रात हमने ट्रक 2,500 रुपया दे के बड़ी मुश्किल से मंगाया लाल चौक से, और कहीं 5-6 घरों के लोग, थोड़ा जीवन यापन का सामान जिसमें एक सूट केस में थोड़े कपड़े, 3 थालियां, तब मिट्टी के तेल का स्टोव होता था वो लेके, और बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को, लड़कियों को लेकर ट्रक में बैठ गए, रात के अंधेरे में मोहल्ले के पिछवाड़े से निकल गए। और उसके बाद ये चीज थी, और कहा कि हम 3 महीने में आ जाएंगे, यहाँ भारतीय सेना वो सब कुछ ठीक कर लेगी, भारत सरकार है, लेकिन वो 3 महीने आज 3 दशक से ज्यादा हो गया, हमने अपनी जन्मभूमि का रुख नहीं किया, न किसी सरकार ने सुध ली, और इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताया, जबकि जनसंहार की प्रॉब्लम है। जब तक भारत सरकार को जनसंहार नहीं मानेगी तब तक आप इसे सुलझा नहीं सकते। तीन पीढ़ियां चली गई हैं, चौथी पीढ़ी भी निष्कासन में है, और इस निष्कासन को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप कश्मीर में जहादी मानसिकता को और उसके पीछे जो पूरी व्यूहरचना है उसको नहीं समझेंगे। तो ऑपरेशन टोपैक से कम समझे तो आपको समझ आ जाएगा कि कश्मीर में किस तरह का जहादी चक्रव्यूह भारत को हम कहेंगे जंगजोर कर रखता है।
जी, तो आपने जैसा कहा कि 1931 से ही इन सब चीजों की शुरुआत थी, तो क्या कारण है कि इस साजिश को हम लोग समझ ही नहीं सके, हमारा देश बिल्कुल नहीं समझ सका?
देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। होता ऐसा है कि शुरू से जितनी भी भारत की सरकारें रही उन लोगों ने कश्मीर में बहुसंख्यक समाज के साथ, उन्होंने जैसे महाराजा हरि सिंह को यहाँ से हटाया गया, शेख अब्दुल्ला को एम्पावर किया गया
जी।
और उससे शर्त रखी कि आप महाराजा हरि सिंह को निकालिए तब यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, और शेख को एक तरह से डिक्टेटर बना दिया गया, और उसने नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसको बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, सारी पावर अपने हाथ में ली। और उसके बाद इन्होंने जो भारत की सरकारें रही, भारत का जो तंत्र रहा, उसे सोचा कि यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, इनको रियायतें देते रहेंगे, शायद इससे हृदय परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं हुआ। उस समय चलते चलते जो धारा 370 और 35 से आई, उसने तो ऐसा कर दिया कि जैसे भारत की भूमि में ही एक पाकिस्तान की संरचना हो गई। एक पाकिस्तान तो भारत से पृथक होकर बन गया, लेकिन भारतीय प्रजातंत्र ने इतनी अपीजमेंट की, इतनी खुशामद की कि वो ये भूल गए। उन्होंने कहा कि ये एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसको तभी भारत के साथ रखा जा सकता है अगर आप किसी की नाजायज मांग भी मान ले, और वो ब्लैकमेल करते गए, उसमें फंसते गए, और अल्टीमेटली हुआ क्या, एक ऐसा पाकिस्तान बन गया जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल भारत की भूमि के अंदर भारत के संविधान द्वारा संरक्षित हुआ। तो वही हाल हमारा हुआ जो पाकिस्तान में हिंदू का हो रहा है, उसका धर्म परिवर्तन होता है, या मारा जाता है, काटा जाता है, या उसका जेनोसाइड होता है, वैसे यहाँ भी हुआ, लेकिन फर्क इतना था ये भारत के अंदर पाकिस्तान बन गया। और एक ऐसी स्थिति में बताऊंगा कि जिसको आप मुझे कहेंगे क्या हुआ, मैं कहूंगा इंडियन स्टेट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडियन नेशन। कहने का मतलब जो भारत का तंत्र है वो भारत के राष्ट्र के साथ ही बिड़ गया। मतलब कश्मीर में अलगाववाद को, जहाद को, पृथकतावाद को उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि भाई ये तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मर्जी हो। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर कहा उसको, जबकि ये जहाद था, ये लोकल चीज नहीं थी, ये पूरे इंटरनेशनल जहाद का पार्ट था। जब मुजाहिदीन या अफगान फाइटर्स आए वो वहां लड़ रहे थे, कश्मीर में वहीं पाए जाते थे, आपके ये जो है अभी आईसिस के झंडे वहां फहराए गए, जो भी बाहर होता। अभी मुझे डर है कि दोबारा से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अब जो अमरीकी फौजें निकल गई हैं, तालिबान ने कैप्चर किया, अगर हम लोग ये न समझे हम फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जब तब फंसे थे। अगर वो फिर उनका रुख कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की ओर हुआ तो हम फिर उसी चपेट में आएंगे। हालांकि अभी भी हालात बिल्कुल सेंसिटिव बने हुए हैं, नाजुक हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत के प्रजातंत्र ने, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, वो कोई भी हो, लेफ्ट से हो, राइट से हो, सेंटर से हो, उन्होंने कंसेंसस बना लिया कि जम्मू कश्मीर में अगर हमने अपना जो वर्चस्व रखना है तो हमें मुस्लिम कम्युनलिज्म के साथ कंप्रोमाइज करना होगा। मुस्लिम कम्युनलिज्म को सेक्युलरिज्म का लबादा पहनाया गया, आपने उसको चोगा पहना दिया। लेकिन ये ऐसा हो गया जैसे आप किसी बिल्डिंग पर सीमेंट, गीली बिल्डिंग पर सीमेंट चढ़ाते हैं, वो प्लास्टर गिर जाता है। आप मुस्लिम कम्युनलिज्म की बिल्डिंग पर, गीली बिल्डिंग पर आप सेक्युलरिज्म का जो ऊपर लबादा चढ़ा रहे थे वो प्लास्टर चढ़ा, वो बार बार गिर रहा है लेकिन वो छुपता नहीं है। तो यही कारण रहा। अब 370 हटने के बाद आशा तो बंदी है, लेकिन अभी भी डिफैक्टो डी जूरे मुस्लिम स्टेट में कोई फर्क नहीं, क्योंकि जिस तरह की अभी भी इंक्लिनेशन आ रही है, अभी भी जो व्यवस्था है वो वही है ग्राउंड पर न वापसी हो, क्योंकि जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं, क्योंकि पेनिट्रेट सबवर्शन हो चुका है, मायावी लड़ाई है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल आपके सिस्टम में घुस चुके हैं, चाहे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, पुलिस तंत्र में, किसी भी चीज में, शिक्षा प्रणाली में, यूनिवर्सिटीज में उनका वर्चस्व है। उसके बाद भी उन्होंने एक दूसरा एक ग्रुप खड़ा किया है जो हिंदू ही है लेकिन वो उनका काम कर रहे हैं, जिनको हम फिफ्थ कॉलम कहते हैं। वो फिफ्थ कॉलम बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो मायावी राक्षसों का काम कर रहे हैं। तो उनके लिए आप इसको समझना होगा कि आप इस लड़ाई को तब तक नहीं लड़ सकते जब तक इस चीज को आप समझेंगे नहीं।
बिल्कुल, बहुत ठीक आपने कहा डॉक्टर साहब। जैसा कि उस समय आप लोग निकले तो अब वो बार बार चीजों को दोहराना तो एक दर्द में जाने वाली बात होगी फिर से, लेकिन ऐसा जैसा आपने बताया कि उस समय मेरे से आपकी बात हुई थी कल, तो आपने बताया था कि गर्मी इतनी थी और जम्मू में आकर और कश्मीर से ठंड से आकर आप लोगों को आदत थी, तो जो बुजुर्ग लोग थे या कमजोर या बीमार थे तो उनके ऊपर असर हुआ, तो इस तरह से आप लोगों ने कैसे दिन बिताए? मतलब आप लोगों को कुछ सुविधाएं मिली यहाँ पर आकर या उसी तरह चलता रहा?
देखिए, इस ये प्रश्न भी अपने आप में बड़ी चीजों को, अपनी व्यथा इसमें छुपी है इसके उत्तर में। देखिए, जब हम वहां से निकले तो हम एक ऐसे इलाके के रहने वाले लोग हैं जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री में रहता होगा मैक्सिमम, सर्दी में -1-2 में भी टेम्परेचर जाता होगा, और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जवाहर टनल जो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक मतलब एक उसमें डिफेंस का काम करती है, उसको पार करेंगे तो बानिहाल क्रॉस करेंगे तो जम्मू का क्लाइमेट शुरू होता है, जम्मू से पार करेंगे तो कश्मीर का क्लाइमेट। तो आपने एकदम से एक ऐसे वातावरण में आते हैं जहां 9-10 महीने गर्मी रहती है जम्मू में, और आपने कभी ऐसा मौसम भोगा ही नहीं, और जब एकदम से आप आते हो पर कोई तैयारी नहीं, ना आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना आपके पास कोई कपड़े, ना कोई सामान, ना रहने की जगह, तो आप गीता भवन जैसे जगह पर परेड ग्राउंड में एकदम से डंप होते हैं लावारिस लोगों की तरह, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, 70-80 साल के दादा, उसके बाद माँ बाप, उसके छोटे छोटे बच्चे, और इतनी तपती गर्मी में आप उतरते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, और कम से कम 3-4 साल ये चलता रहा। उसके बाद भी तो उसके बाद ऐसी जगहों पर कैंप लगे, क्योंकि करना क्या था ऐसे शरणार्थियों का, एक मुट्ठी में कैंप लगा है बटल बलिया में, एक आपका ये बड़ी जगह लगा है ये आपका पुरखू में, एक PRT नगरोटा रहा। तो ये जो कैंप लगे, ये पहले तंबू थे, जो कैनवास के तंबू आप देखते हैं जैसे 47 में देखे वैसे, उसी तंबू में कितने लोग रहते थे, दादा दादी भी, माता पिता भी और बच्चे भी। अब प्रवेशी का भी हाल देखिए, वो भी रहा, बीमारियां लग गई और शौक लगा, और जितने दादा वाली उम्र के लोग थे, दादी वाली उम्र के लोग थे, हर किसी के घर में एक एक देहांत हुआ। मेरी घर में मेरी दादी का हुआ, मेरी नानी का हुआ, मतलब उस साल में जून जुलाई की महीने में, जो अब आते आते हमारे यहाँ जितने भी अखबार और निकलता था उसमें ऑबिचुरीज होती थी कि आज कौन, हमारे लोग अखबार देखते थे, जम्मू का एक सेल शेयर है कि उसमें ऑबिचुरीज, आज पता करें कि कौन कहाँ मर गया, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी, वहीं से पता लगता था कि कोई रहा कि नहीं रहा। इतनी दर्दनाक कहानी है, उसमें श्रद्धांजलि छपती थी, 10वां दिन यहाँ पर होगा तो वो लोगों को वहीं से पता, लोग हर कोई एक स्थानीय 50-50 रुपए का अखबार आता था उसको लाते थे और देखते थे, उसमें फोटोग्राफ आई है या छपा है कि किसका देहांत हुआ। तो फिर ऐसे फोन वगैरह तो थे नहीं तब, ना ही उस समय मोबाइल था, तो लैंडलाइन बड़ा कम था, तो इस तरह से हमें एक दूसरे का पता लगता था किसी का देहांत हुआ या कुछ हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी वो चीज, बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम रही, शिक्षा की प्रॉब्लम रही, एडमिशनें नहीं मिली। यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ कि भाई बाहर से लोग आए हैं तो अब यहाँ का सब कुछ खा जाएंगे, ऐसा भी हुआ, क्योंकि इतनी भ्रांतियां फैली। तो फिर कैंप क्लासेस हुई बच्चों की, उन्हें तंबुओं में क्लास लगती थी, उस तपती धूप में 45 डिग्री की धूप में बच्चे ग्राउंड में तंबू में बाहर पढ़ते थे और अंदर ही सोते थे, आप समझ लीजिए, सांप बिच्छू काटते थे, डसते थे, कितने हुए। और उसके बाद जितने भी असामाजिक तत्व वो भी उन कैंपों में प्रताड़ित करते थे, शराबी लोग या जुआरी लोग, ये इवटीजर्स, लड़कियों का निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था ऐसे लोगों, क्योंकि उसका सामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं, वो सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे स्लम के लोग हैं, उन्होंने समझा, उनको क्या पता था कि ये कितने अच्छी संस्कृति के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का मुकाबला करते करते अब कुछ लोग किराए के मकानों में, कुछ पूरे भारत में, विश्व में बिखर गए, और कुछ अभी भी यहाँ जगती करके एक कैंप है जिसमें एक आध कमरा उनको कंक्रीट दिया गया है और उसमें वो रहते हैं लोग। तो उसके बाद अभी भी टीआरटी नगरोटा में वन रूम टेनमेंट्स हैं वहां पर, और यहाँ पर आपके पुरखू में है। तो अभी भी अगर आप जम्मू आए हैं तो आपको आप देख सकते हो मुट्ठी में, वो भी जो पहले कैंप थे आप देखोगे कि उसके बाद उनको एक एक कमरे का, मतलब पहले तंबू था फिर एक एक कमरे का कंक्रीट स्लम जैसा बनाया गया, तो उसमें वो रहते थे। लेकिन हमारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई से हमेशा नाता रहा, तो उसके बलबूते पर हमने वहां से भी अपनी शिक्षा के आधार पर अपने आप को कहीं ना कहीं इस काबिल को रखा कि हम जीवित रहें, जीवन यापन करें। और हमारे माता पिता ने एक रोल किया कि हम भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को सरस्वती जरूर देंगे, उनको पढ़ाएंगे, और उसी के फलस्वरूप, उनके बलिदान के फलस्वरूप आज आप देख रहे हो कश्मीरी पंडित कहीं पर भी होगा अनपढ़ नहीं होगा, भिखारी नहीं होगा और देशभक्त भी होगा। ये उसी माता सरस्वती शारदा की कृपा है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ठीक आपने कहा सर। जितना भी आपने बताया तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो शरणार्थी कैंप लगे थे और वहां पर आकर लोगों की जो दशा हुई थी बिल्कुल वैसा ही आपने बताया, तो मतलब मन बहुत व्यथित होता है। लेकिन यही लगता है कि क्यों नहीं हम सोच पाते, ये सारी बातें हम लोग जानते भी हैं लेकिन इसको तो सब सिविल सोसाइटीज या जितनी है मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कुछ किया जाता इस बारे में, खाली बातें ज्यादा होती हैं, उतना ज्यादा किया नहीं जा रहा है। अच्छा, आपने डॉक्टर जैसा बताया कि मतलब कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो जितने भी वहां से लोग निकले हमेशा बात होती है कि कश्मीरी पंडित, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि उनको ही ये दुख झेलना पड़ा तो कश्मीर में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर है, वहां पर पंडित किसको कहते हैं, जाति के आधार पर है वर्ण व्यवस्था कश्मीर में?
देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। कश्मीर को लेकर मैं बता दूं, जैसे पूरे भारत में, उत्तर भारत में खास करके वर्ण व्यवस्था है, कास्ट व्यवस्था है चार वर्णों में, कश्मीर में ऐसा नहीं है।
अच्छा।
कश्मीर हमेशा शैव परंपरा के अंतर्गत चलता रहा, तंत्र परंपरा के अंतर्गत, जिसको हम त्रिक भी कहते हैं, स्पंद भी कहते हैं और प्रतिविज्ञान कहते हैं, कुल और क्रम, ये सारी परंपराएं हैं कश्मीर शैविज्म में। कुछ द्वैत भी हैं, कुछ अद्वैत, लेकिन अद्वैत का बोलबाला आचार्य अभिनव गुप्त ने सबको संगठित करके किया। लेकिन है क्या इसमें, कश्मीर में न तो लिंग भेद है न ही जाति भेद है। जो असली कश्मीरी पंडित समाज का रहा ये इस्लाम के आने से पहले और अभी भी, लिंग भेद और जाति भेद नहीं है, जो फेमिनिज्म की बातें लोग आज करते हैं हमारे यहाँ पहले से है। तो पंडित शब्द यहाँ पर जो है वो कोई पुरोहित को डिजिग्नेट नहीं करता,
जाति का सूचक नहीं है। जी,
वो पंडित शब्द यहाँ पर इसलिए, चाहे अब यहाँ कोई कश्मीरी पंडित इतना पढ़ा लिखा हो या नहीं भी, वो तो भी कश्मीरी पंडित है, पंडित जी इसको बोलेंगे, लेकिन वो पंडित जी वो पूजा पाठ वाला पंडित जी नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि संस्कृत भाषा में बौद्धों ने भी, जब बुद्धिज्म आया और फिर मुस्लिम शासक भी आए, तो कश्मीरी पंडित को संस्कृत में भट्ट कहते हैं, विद्वान, मतलब जिसको किसी, जैसे आप अपने कोई डॉक्टर है तो नाम के आगे डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर लगाता है, ये कश्मीरी पंडित शब्द भी उसी का वाचक है। अब मेरे दादाजी के नाम के आगे पंडित लगता था, तो हर कोई कश्मीरी पंडित का जो भी नाम है तो उसके आगे मिस्टर या श्री की जगह हम लोग पंडित लगाते हैं अभी भी, और जितने भी वाले वो पंडित 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 ही लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जाति सूचक नहीं है, ये वहां के समाज का जो शिक्षा को कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पूरा समाज ही पंडित था, मतलब स्कॉलर था, विद्वान था, शिक्षित था, आप कह लीजिए शिक्षित था, अनपढ़ नहीं था,
जी
शिक्षित था, 100% लिटरेसी, हमारा ऐसा समाज है इसकी 100% लिटरेसी है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है कम से कम लिटरेट जरूर होगा। तो एक व्यवस्था और है हमारे यहाँ, वो काम के आधार पर है, मतलब जिनके पास सरकारी नौकरियां होती थी, आगे चल के जब बाहर मुगल रूलर आए वगैरह, अफगान आए, तो दो भेद हुए, वो ये था कि कुछ लोग जो सरकारी नौकरी में थे उनको कारकुन कहते थे, जो काम करते थे सरकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और जो अपना काम करते थे, एंटरप्रेन्योर थे, दुकानदार थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, उनको नॉन कारकुन कहते थे। ये दो समाज, उसमें समाज में धाराएं बनी। तो यूजुअली जैसे आज भी होता है कि हमने डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही होगी, इंजीनियर की इंजीनियर से, लोग ऐसे ही चाहते हैं, वो तो अब दूसरी बात है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर शायद टीचर से भी शादी कर रहा है, वैसे ही वहां पर ये व्यवस्था भी अब टूट गई, अब कारकुन की नॉन कारकुन से भी शादी होती है, पहले भी यही होता था, प्राइवेट वाली गवर्नमेंट के साथ में होता था, ऐसे धारणाएं थी, ये चीजें थी, बाकी छुआछूत वाला मसला नहीं था। ये कश्मीरी पंडित समाज में एक ईश्वर भगवान शंकर को की देन है, जिसको हम बैरोस रूप में देखते हैं, पर भट्टारक के रूप में, परम शिव के रूप में, और उसका ही वर्चस्व शिव शास्त्रों का जो इतना रहा, हर किसी घर में अभी भी शिवरात्रि जब मनती है वो तांत्रिक पद्धति से मनती है, और हमारे यहाँ पर जो पूजा वो शैवी व्यवस्था से होती है। हम लोग लोगाक्षी का गृह सूत्र फॉलो करते हैं, जैसे कहीं उत्तर भारत में कात्यायनी का होता है, हमारे यहाँ लोगाक्षी का गृह सूत्र है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने गृह सूत्र हैं वैदिक परंपरा के। हम भी वही, हम कश्मीरी पंडित यजुर्वेद के, कश्मीरी पंडित बिलोंग टू कथक स्कूल ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा, कृष्ण यजुर्वेद का जो कथक वर्ग है हम उसको बिलोंग करते हैं, और उसमें आपके अब ये जो गृह सूत्र हैं लोगाक्षी मुनि के ही फॉलो होते हैं, तो इसका मतलब हम वही पूरी भारतीय परंपरा में जो होता है वो भी हम भी करते हैं, लेकिन गृह सूत्र जैसे देश और काल के साथ अलग अलग होते हैं और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। दूसरा, हम शैवी परंपरा को मानते हैं, यही एक हमारा वर्चस्व है, हमारी एक जो पहचान है वो इस आधार पर है। जी
जी बताइए, पहचान ही खोने को हो रही है इन हालातों में सर, बिल्कुल जी बहुत दुख लगता है। और अगर आप बता रहे हैं जैसा कि जाति के आधार पर नहीं थी वहाँ वर्ण व्यवस्था, लेकिन जैसा कि आपने बताया शायद 3% आपने बताया कि वहाँ पर है कश्मीरी पंडित थे, तो शुरू से अल्पसंख्यक ही हुए ना फिर वहाँ पर तो कश्मीर में पंडित?
जी नहीं, ऐसा नहीं था। 14वीं शताब्दी में इस्लाम के आने से पहले कश्मीर बहुसंख्यक में ही हिंदू था।
नहीं, मैं बाद की बात कर रही हूँ, बाद के
बाद की बात में, आज की डेट में अब 3% ही है।
3% है जी। तो अब आप लोगों ने कभी आरक्षण की मांग उठाई हो या आप लोगों के लिए सोचा गया हो ऐसा कुछ रहा?
जी, ऐसा हुआ कि समय समय पर 47 के बाद भी जब स्वतंत्रता हुई और जम्मू कश्मीर का विलय भी हुआ तो डिफरेंट पार्टीज में हमारे प्रतिनिधि रहे, लेकिन उससे काम नहीं बना, क्योंकि जब आपकी मेजोरिटी का ही रूल है तो उसमें आपका एक प्रतिनिधि आपके हक में कोई चीज नहीं कर सकता, बिल नहीं ला सकता, और यही कारण था कि हम एंड तक वो लड़ाई हारते ही गए। तो कहने का मतलब हुआ जब हर ओर से प्रताड़ना, न तो आरक्षण से भी क्या होना था, क्योंकि जिस समाज में आप न तो अपनी पंचायत चला सकते हैं, न अपना म्युनिसिपल काउंसिल चला सकते हैं, न आप एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी भर्ती है, न शिक्षा पद्धति में आप हैं, तो आप आरक्षण लेके क्या करेंगे ये राजनीतिक स्तर पर। तो जब 90 में बिल्कुल पलायन हुआ, जिसको मैं कहूंगा जनसंहार हुआ, तो उसमें निर्वासन हुआ, उसमें एक निष्कर्ष निकला, सारे लोग जो किसी भी मतलब आप कहिए राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते थे, उनका ही मानना था अब तुम सारे बेघर हो गए, अब ये जो सारी हमारी जो आपस में मतभेद हैं राजनीतिक स्तर पर उनका कोई मोल नहीं है, क्योंकि हम सारे शरणार्थी हैं। तो 1990 में महाजन सभा में यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ, जितने भी कश्मीरी पंडित मतलब संस्थाएं थी उसमें, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, या जितने भी और संगठन थे, सारे युवा भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमें, अगर हम जाएं तो हम एक सिक्योरिटी जोन में वापस जाएंगे, और सिक्योरिटी जोन के बारे में ये चला भी, सिक्योरिटी जोन तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी जोन का मतलब ये थोड़ी है कि आपके पीछे सुरक्षा बल रहेंगे, आपने फिलना भी है डुलना भी है, जबकि हाथ में मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या करेंगे। तो एक साल का टाइम लिया लोगों ने, जिसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे और उन्होंने मंथन किया, ब्रेन स्टॉर्मिंग की, और चलते चलते जब 1991 आया, उससे पहले एक दो रेजोल्यूशन आई जिसमें रेजोल्यूशन नंबर 4 और रेजोल्यूशन नंबर 5, एक उसमें ग्रैंड डिजाइन ऑफ मुस्लिम प्रेसिडेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें सिक्योरिटी जोन का रेजोल्यूशन भी था, उसको कंक्रीटाइज किया गया, और अल्टीमेटली 27 उसी दौरान लोगों में एक जो ये सारा ग्रुप था, इसमें एक यूथ का ग्रुप निकल आया, युवाओं का, उन्होंने कहा ये मंथन से तो कुछ होने वाला नहीं है, हमें कोई प्लान चाहिए, तो उन्होंने वहां पर एक तरह से विद्रोह कर दिया, उन युवाओं ने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम इसको आगे ले जाएंगे, हमें कश्मीर में हमारा हक बनता है, हमारी जन्मभूमि है, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है हजारों साल पुरानी, हम उससे विमुख नहीं हो सकते, हमें वो वापस लेना है, और इस बार हम जाएंगे तो बिल्कुल प्लान नहीं होगा, इस टाइप का सिस्टम हमें चाहिए। तो एक पनुन कश्मीर नाम के संगठन का निर्माण हुआ जो उसी मंथन से निकला। पनुन कश्मीर का जब आप हिंदी में अनुवाद करते हैं, पनुन होता है अपना और कश्मीर कश्मीर। तो उन लोगों ने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके बाद सारे लोगों ने मिलके एक रेजोल्यूशन पास किया 27 दिसंबर की रात को और मध्य रात्रि को 12 बजे के बाद जम्मू के अभिनव थिएटर सभागार में जो खचाखच भरा था हजारों लोगों से, उसमें मार्गदर्शन प्रस्ताव पारित हुआ सहमति से, जिसमें ये कहा गया कि पूर्व और उत्तर वितस्ता नदी, जिसको जहलम लोग कहते हैं, वितस्ता के पूर्व और उत्तर में, नॉर्थ और ईस्ट में एक यूनियन टेरिटरी का गठन होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। 91 की बात कर रहा हूँ, 28 दिसंबर की, जहाँ भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो, उसमें श्रद्धा रखने वाले लोगों को बसाया जाए, कश्मीरी पंडित भी होंगे, 370 निरस्त किया जाए, तब मांग थी। और उसी मांग आज कलीबुर्ग में हुई, लेकिन और हम उसी में जाएंगे, वो उसका मैप भी उन्होंने बनाया और वो चीज चलती रही। उन्होंने कहा यही रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड होगा और अब हम इस तरह जितने उसमें उतने सारे लोग आएंगे जो पिछले 70 साल में, 47 से पहले भी, 31 के बाद पूरे भारत में फैले हैं, कश्मीरी पंडित, सरस्वत ब्राह्मण या जो भी हैं, निकले हैं कश्मीर से, वो 7 लाख से ज्यादा बनते हैं, कम से कम 10 लाख के करीब, वो सारे के सारे यहाँ बसाए जाएं और हमें पूरे अधिकार दिया जाए जहां हम अपना शासन चला सके और भारत के संविधान को पूरी तरह लागू किया जा सके, भारत की संस्कृति को लागू किया, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। तो उसका आगे इस तरह से उन्होंने सोल्यूशन दिया, जो लड़ाई आज भी चल रही है। जी
जी बताइए सर, बहुत मतलब बहुत ज्यादा दुख लगता है इन सब बातों को सुन के कि कश्मीर तो वाकई हमारा मुकुट था और क्या हाल आज हो गया। और कुछ बताना चाहें डॉक्टर साहब आप पिछला
जी, अब इसी में ये मैं जोड़ना चाहूंगा, ये जो भूमि लेने की बात हुई, फिर ऐसे ही बड़े संगठन और आए, उन्होंने भी कहा कि आप बिल्कुल सही है, कश्मीर में हमारी वापसी तभी हो सकती है जब हमें एक अलग सेपरेट प्लेस, वन प्लेस सेटलमेंट चाहिए, हम अलग अलग जगह बिखरेंगे नहीं। पहले हम गली मोहल्लों में रहते थे, अब हमारे घर अपने थे, खेत खलिहान अपने थे, वाणिज्य व्यापार अपना था, हम टिक तब नहीं पाए, अब क्या टिकेंगे। अब लोग हमें कहते हैं अपने अपने घरों में जाइए, अरे भाई कौन से घरों में जाए, जो मकान थे जल गए, लूट लिए गए, कब्जे में ले लिए गए, या उनको थोक के मॉल पर बेच दिया गया, हम कहाँ जाएं। एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, एक नई बस्ती का निर्माण करना होगा, और वो बस्ती ऐसी जहां पर कानून की व्यवस्था हो, देश का शासन, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, भारतीय परंपरा, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति फले फूले, जहां पर प्रताड़ना ना हो। तो लोगों ने ये मान लिया कि एक तरह से होमलैंड के ऊपर कंसेंसस हुआ, हमें अपना होमलैंड वापस चाहिए, अब हम दोबारा पलायन, 7 बार हमारा पलायन हो चुका है, अब हम दोबारा पलायन नहीं करेंगे, हम भारतीय होने के नाते, हमें भारतीय होने के कारण निकाला गया, लेकिन इस बार हम पूरा भारत लेकर वापस जाएंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुटमणि नहीं, भारत का मस्तिष्क है, जहां से सांस्कृतिक विचारधारा परंपरा का प्रवाह पूरे भारत में हुआ है। क्योंकि इसको समझा नहीं गया, ये कश्मीर पर हमारे दुश्मनों ने इसलिए चोट की, उनको पता है कि कश्मीर भारत की संस्कृति का मस्तिष्क है, जब मस्तिष्क पर चोट होती है तो पूरे शरीर में पैरालिसिस होता है। तो उसको समझना होगा, जब हम इस मस्तिष्क का की सुरक्षा करेंगे, ये वापसी करवाएंगे कश्मीरी पंडितों की, भारत में जो एक पॉलिसी पैरालिसिस हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सारे लोग वन प्लेस सेटलमेंट विद फुल राइट्स की मांग कर रहे हैं, तभी जाके ये नरसंहार जो है उससे हम मुक्त होंगे और भारतीयता फिर से कश्मीर में लागू होगी। सिर्फ केवल 370 हटाना कागजों में, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर न तो आपकी जमीन है, न हमारे पास, न हमारे मकान है। हमें जब तक वहां पर फिर से एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, जहां हम रह, घर हमारे नहीं है, बिल्कुल नहीं रह चुके हैं, हमें नए से निर्माण करना है, तो वो चीज जब तक नहीं होगी तब तक ये फलीभूत नहीं होने वाला। जी
यानी यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि 370 और 35 वे हटने के बाद आपको नहीं लगता कि खाली कागजों में हटने से कोई परिवर्तन आ पाएगा? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब तक उसको हम
अभी रिसेंटली क्या हुआ कि सरकार ने DDC इलेक्शंस किए, जिसमें पंचायत इलेक्शंस भी हुए, जिसमें कश्मीरी पंडित भी इलेक्शन में उतरे। अभी लोग कह रहे थे जैसे गांव में जहां कहीं हुई जमीनें हैं, उनने कहा चलो हम इलेक्शन में उतरते हैं, वहां के लोगों ने बायकॉट किया तो ये लोग जीत के गए, वहां पर काम करना चाहा वो किसी गांव में, किसी शहर में। हुआ कि अभी राकेश पंडित था, उससे पहले अजय भारती नाम से कश्मीरी पंडित, दोनों को मार दिया गया, वो सरपंच थे दोनों, और उनको मार दिया गया। जब एक बंदा जो चुनकर भी आया उसको भी आपने मार दिया, तो एक आम कश्मीरी पंडित जब जाएगा क्या वो सुरक्षित हो गए? तो अभी इसी साल की बात है, उससे पहले पिछले साल भी हुआ, राकेश पंडित तो इसी साल मारे गए, और इसी साल शुरू में कृष्णा ढाबा वहां को चल रहा है, बड़ा मशहूर है ये अपना दुर्गा नाग वाले रोडल गेट पर, उसको मारा गया, वो जम्मू से बच्चा था, उसको मार दिया गया। उसके पिता तो पहले ही चले गए थे लेकिन उसको मार दिया, तो ये कहने का संकेत था कि आपके 370 हटाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ये अल्पसंख्यक हिंदुओं को कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षा नहीं देंगे जमीन पर, तब तक ये जो चीज है काफी कार्रवाई कहने के लिए बाहर अच्छा है, बाहर के लोग बेचारे जानते नहीं है, वो तो ठीक कह रहे हैं आप क्या दिक्कत, आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो ग्राउंड पर उनको यही बताना है कि 97% के बीच में 3% कैसे जाएगा जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आपको एक एरिया आइडेंटिफाई करना है, एक नई बस्ती का निर्माण करना है जिसका समूल नाश हो चुका है। आप हवा में एज ए टूरिस्ट नहीं जा सकते, हम पर्यटक बन के जाना नहीं चाहते अपनी जन्मभूमि में 2 दिन के लिए, वो तो वैसे कह रहे हैं आइए आपका घर है, पर्यटन बन के आप यहाँ पैसा खर्चिए, पैसा उनको दे दीजिए और वापस आ जाइए, ये तो हम नहीं चाहते। हम परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं, स्थायी रूप से जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वहां पर बिल्कुल जमीन पर एक नए सोशो कल्चरल पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा।
शायद समाधान भी इसी से निकलेगा जब इस तरीके से जाएंगे आप लोग, और मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि ढंग से जाकर कोई रह सके। और ये तो कोई तरीका ही नहीं कि जिस तरीके से हटा दिया और कहा जा, वाकई हम लोग भी यही सोचते हैं कि क्यों नहीं आप लोग जा रहे, अब तो सब ठीक है वहां पर, लेकिन जैसा आपने बताया तो पता चली बातें। और कुछ डॉक्टर साहब आप कहना चाहें,
अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आप पूछिए।
बस और क्या मैं बोलूं, मैं ये चाहती हूं कि कश्मीर की संस्कृति के बारे में कभी हम एक नेक्स्ट एपिसोड जो बनाएं उसमें मैं कश्मीर की संस्कृति और शैव दर्शन और इन सब चीजों पर आपके विचार सुनूं। तो आज के कार्यक्रम के लिए तो सर आपका बहुत बहुत आभार, और मैं चाहूंगी कि कभी इस विषय पर भी आप हमें अपना थोड़ा समय दें जिस पर कि हमारे श्रोता और मैं भी इन चीजों को जान सकूं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमें नहीं पता चलती हैं कि ऐसा भी है वहां पर कश्मीर की। कश्मीर की संस्कृति से शायद हम लोग बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, जबकि कश्मीर से ही हमारी संस्कृति का आरंभ होता है। तो इस विषय में हम आपको जानते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये उद्गम है कश्मीर की संस्कृति।
बिल्कुल उद्गम है जी।
मैं कहता हूँ संस्कृत भारत से ही संस्कृत कश्मीर का उदय हुआ, ये डिसंस्कृताइजेशन की प्रोसेस है, हमें इसे रिसंस्कृताइज करना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कश्मीर से लेकर कामरूप तक भारत की जो अंदर रगे हैं, जो अंदर हमारी नाड़ियां हैं, उसमें वही एक ही सांस्कृत रक्त बहता है और उसको डिस्कनेक्ट किया गया। आपने ये चर्चा की, आपका साधुवाद। और
एक बात मैं डॉक्टर साहब कहना चाहूंगी, मेरे मन में आई कि ऐसा क्यों होता है कि हर जगह हमारी संस्कृति पर ही चोट की जाती है, ये एक प्रश्न है मेरा सबसे है, ये हमारे श्रोताओं से भी, आप जैसे विद्वानों से भी, सबसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां पर भी हम देखते हैं सबसे पहले हमारी संस्कृति पर ही चोट की जाती है, चाहे वो बंगाल का मुद्दा हो या कहीं का भी आप देख लीजिए, लव जिहाद भी हो रहा है ये भी।
बिल्कुल जी, ये इसलिए है क्योंकि संस्कृति जो है वो प्लेस कॉन्शियसनेस को बनाती है, एस्थेटिक्स को बनाती है। अगर आप आचार्य अभिनव गुप्त को देखें, वो कश्मीर का जब वर्णन करते हैं, वो कश्मीर को केवल एक भूभाग नहीं मानते, उसको भैरव स्वरूप में शिव रूप मानते हैं। आपने कहीं पर विघ्न डालना हो तो सबसे पहले उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। तो इसलिए संस्कृति के ऊपर इसलिए कुठाराघात होता है क्योंकि जब आपको अपनी संस्कृति से तो दूर रखा जाता है या उसके बारे में नफरत पैदा की जाती है तो आपसे उससे अपने आप विमुख हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता। अब हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने हमारे संस्कृति से परमार्थिका और व्यवहारिका को अलग किया। उनको पता था कि परमार्थिका को अगर अलग कर लें, जिसमें संस्कृति होती है, व्यवहारिका रखते हैं, संस्कृत का मतलब एक भाषा नहीं है, एक सिस्टम है, एक सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, तो उसमें से उन्होंने ये जो है व्यवहारिक जो है डे टू डे लिटरेचर वगैरह उसको रहने दिया, लेकिन परमार्थिका को बाहर निकाल दिया, जिसमें विलियम जोन जैसे लोग हैं उन्हें बाहर निकाल दिया। हमने सोचा कि बस यही है, हम वहीं पढ़ते गए, प्राइमरी सोर्सेज हमने नहीं पढ़े, हम सेकेंडरी सोर्सेज पढ़ते हैं। अगर हम तंत्र लोग पढ़ें, हम तंत्र लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ते, हम उसकी टीकाएं पढ़ते हैं, हम गीता डायरेक्ट नहीं पढ़ते, हम उसकी टीका पढ़ते हैं। जो टीकाकार कहता है वो कुछ चीजें छोड़ देता है, और फिर वो भी जब विदेशी हो वो उसको अपने ढंग से देखता है, सिमेट्रिक ट्रेडिशन में। और नॉन हमारी है पानी की सभ्यता, बाहर की सभ्यताएं जो है या तो वो रेगिस्तान की सभ्यता है या कुछ और सभ्यता है, हमारी सभ्यता पानी पर आधारित है, नदियों के किनारे बिल्कुल, मतलब उसका कहने का मतलब फर्टाइल है, वो बिल्कुल भरन नहीं है, बांझ नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब आपसे यही है कि इन लोगों ने सबसे पहले हमारी नाड़ी काट दी और नाड़ियों में रक्तचाप बंद हो गया, तो हमने सोचा बस अब हमारा तो कुछ है ही नहीं, परमार्थी का और व्यवहारिक का कुछ जब अलग कर लिया गया तो हम अपनी संस्कृति के बारे में हमारे मन में लोप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल ऐसे रुष्ट हो गए कि हमें लगता है कि हम हमारा तो कुछ है ही नहीं, जबकि हमारे पास लिटरेचर से लेके साइंस से लेके शल्य चिकित्सा से लेके आयुर्वेद से लेके तंत्र से लेकर आगम और निगम सब कुछ है। कितने लोग हमारे पास यही है, जितने हमारी पुस्तकें हैं पूजा घर में रखते हैं और हम बच्चों को भी कहते हैं इसको नमस्कार करिए, हाथ नहीं लगाना, ये झूठे हो जाएंगे, जबकि वो खजाना है। उस खजाने को एक बार पढ़िए तो सही, उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़िए जैसे आप मैनेजमेंट की किताब पढ़ते हैं, आप उसको वैसे ही पढ़िए जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स या किसी आप लिटरेचर की किताब पढ़ते हैं, तो आपने उसको बंद करके, वो बंद रखने के लिए नहीं है, पुराण हमारे इतिहास है, वो जैसे हम एंशियंट मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री में उसको डालते हैं वो हमारे ऊपर थोपी गई है। जैसे हम पुस्तकों को इतिहास के तौर पर पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता लगेगा, या महाभारत को एक इतिहास के तौर पर पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता लगेगा क्या है, आप उपनिषदों को फिलॉसफी के तौर पर पढ़ना करेंगे तो आपको पता लगेगा हम कितने समृद्ध हैं, समृद्धशाली हैं। इसी कारण हमारे ऊपर दुश्मन भी हावी होता है और हम लोग ज्यादातर जो है चीजें उनके गहराई तक नहीं जाते, और हमने अपना लिटरेचर तो पता ही नहीं। हमें ये पता होगा कि अंग्रेजी अखबार कितने निकलते हैं भारत में, आपसे मैं पूछूंगा या मुझसे कोई पूछेगा कि हिंदी के अखबार कितने हैं तो हमारी जानकारी
नहीं होगी। बिल्कुल
हाँ, संस्कृत का भी कोई अखबार निकलता है या हमारी देशी भाषाओं में अवधी में बिहारी में आप या बंगाली में कोई अखबार निकलता नहीं, बिल्कुल नहीं निकलता। आज भी देखिए चाइना का अगर प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट अपनी भाषा में बात करता है तो उसका उसका ट्रांसलेटर होता है, रशिया का होता है, बेशक उसको भाषा आती हो लेकिन वो आपके साथ एक अनुवादक के थ्रू बात करेगा, लेकिन हमारे लोग फिर भी अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस
करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
जिस दिन हमारे में ये कॉन्फिडेंस आएगा, कन्विक्शन आएगा कि हम अपनी भाषा में बात करेंगे, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, और कश्मीर के लिए बता दूं जो शारदा स्क्रिप्ट है उसमें उसी से गुरुमुखी भी निकली जो ग्रंथ साहब की भी भाषा है, जम्मू की टाकरी भी उससे निकली, शारदा लिपि में संस्कृत लिखी जाती थी क्योंकि इसलिए शारदा शैवी परंपरा के हिसाब से उसका स्वर और व्यंजन दोनों, आज हिंदी और संस्कृत स्वर को भगवान शिव का रूप समझते हैं और व्यंजन को हम शक्ति का रूप समझते हैं, जब उन दोनों का आपस में समावेश होता है, यामल रूप होता है, यूनियन होता है, उनका एम्ब्रेस होता है, तो शब्दों का संचार होता है। इस तरह से एक अक्षर हमारे लिए देवी मतलब आकृति, देवी सौजन्य का प्रतीक है, अनुत्तर भट्टारक का प्रतीक है। जब हम इसको समझेंगे, भाषा हमारे लिए ए बी सी डी नहीं है, ए फॉर एप्पल नहीं है, हमारे पास एक एक मात्रा, एक एक स्वर, एक व्यंजन, एक एक शक्ति का परिचायक है, और इसकी बिल्कुल साइंटिफिक है ये। आप ये कभी जब आपसे आपने जैसे बात कहा करेंगे आगे चल के मालनी पर बात करेंगे या परातशिका पर बात करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि कश्मीर ने दिया क्या है, कश्मीर ने यही दिया जो पूरे भारत में फैला, फिर इसी से लोग क्या भी हमारा अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम नहीं है, जागरूकता नहीं है, और हम पर पथभ्रष्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, जो कहेंगे वो मान लेंगे, प्राइमरी सोर्स तक नहीं जाते हैं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे भी जब भी आपके पास समय हो ये इस पर चर्चा करने के लिए मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ और खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये भगवान भैरव परा भट्टारिका माता पराशक्ति की ही अनुकंपा है कि वो हमसे चाहती है कि हम इस पर बात करें, और तंत्रों में भी यही है, वहाँ भैरव और भैरवी का आपस में जो वार्तालाप होता है शायद भगवान भी हमसे वही करवाना चाहता है, वार्तालाप तांत्रिक वार्तालाप के से लोगों तक बात पहुंचे, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं ना आपका मेरा, ये भगवान शिव भगवान भैरव का हाथ है जो हमसे बुलवा रहा है दोनों से, इसलिए उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं उपलब्ध हूँ जब भी आपको।
बिल्कुल सर, हम भी आपके आभारी हैं,
हम जरूर चर्चा
जी सर हम भी आपके आभारी हैं और बहुत जल्द हम इस विषय पर एक चर्चा करेंगे, बहुत ही जल्द करेंगे सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार सर।
नमस्कार नमस्कार
नमस्कार।